हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्योंकि उसका हथियार अमित तो अभी दुनिया में ही नहीं। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमित और तारा दोनों ही परेशान हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब काली शक्तियों का महागुरु इस तरह की कोई हरकत करे। तब अमन ने कहना शुरू कर दिया था, मैं उस काली शक्ति के महागुरु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आज के आज ही काली पहाड़ी पर जाकर उसे काली शक्तियों के महागुरु का अंत कर दूंगा, ताकि फिर काली शक्तियों का महागुरु इस तरह की कोई भी हरकत ना कर पाए। जैसे ही अमन ने ये कहा, तुरंत अमरेंद्र जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और कहने लगे थे, तुम इतनी आसानी से काली शक्तियों के महागुरु का अंत नहीं कर सकते हो। काली शक्तियों के महागुरु का अंत होगा, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश के हाथों होगा। इसीलिए तुम्हें अब तुम्हारे वंश के आने का इंतजार करना होगा। एक बार तुम्हारा वंश इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद काली शक्तियों के महागुरु का अंत निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। तुम्हें क्या लगता है, मैं और तुम्हारे दादा महाराज ने काली शक्तियों के महागुरु का अंत करने की कोशिश नहीं की होगी? हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम चाहकर भी कर महागुरु का अंत नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हमें उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। जैसे ही हमारा वंशज इस दुनिया में आएगा, वो उसका काली शक्तियों को जड़ से मिटा डालेगा। और रही बात प्रेमा के बेटे की, तो तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम उसे भी ठीक कर देंगे। वही प्रेमा रो रोकर बुरा हाल कर चुकी थी। तारा ने उसे संभालते हुए कहा था कि प्रेमा, अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ रह सकते हो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन तभी प्रेमा ने कहना शुरू कर दिया था, नहीं नहीं मैडम जी, आपके वैसे ही पहले भी मुझ पर काफ़ी एहसान है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरा परिवार में सिर्फ और सिर्फ अब मेरी एक बूढ़ी माँ बची हुई है, तो मैं अपनी माँ की सेवा करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी ही आप लोग मेरे बेटे को सही सलामत बचाकर मेरे पास लेकर आओगे। अगर मुझे मेरा बेटा सही सलामत नहीं मिला, तो मैं समझ लूँगी कि शायद ऊपर वाले ने उसका साथ मेरी ज़िंदगी में इतना ही लिखा था, और आपकी की हुई मदद की वजह से अब तो मेरे पास खाने का बर्तन है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी माँ का और अपना अच्छा सा ख्याल रख सकती हूँ, और हमें खाने पीने की कभी कोई परेशानी नहीं होगी और हमें भूख नहीं रहना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, तारा की आंखों में उसके लिए हल्की सी नमी आई थी, लेकिन उसने अंदर ही अंदर अपनी उस नमी को रोक लिया था और कहने लगी थी, ठीक है प्रेमा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम अगर जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक छुड़ा सकती हूँ। तभी प्रेमा ने कह दिया, नहीं नहीं मैडम जी, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मैं अकेली जहाँ तक आई हूँ, तो मैं वापस अकेली भी यहाँ से जा सकती हूँ, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही प्रेमा ने ये कहा, तारा ने उसे हाँ में सर हिला दिया था और जल्दी ही प्रेमा वहाँ से जाने लगी थी। प्रेमा के जाने के बाद अमन ने बड़ी ही मोहब्बत से तारा की ओर देखा था, और उसके बाद उन लोग सभी का ध्यान मल्लिका की पड़ी हुई बुढ़िया की लाश पर गया था। उसकी लाश बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी, वो काला साया का उसके शरीर में होने की वजह से मल्लिका की लाश एकदम काली पड़ चुकी थी, और जगह जगह उसके शरीर से झुरियाँ ही झुरियाँ दिखाई दे रही थी। चेहरे पर तो मांस केवल नाम को ही था, वरना केवल हड्डियों का ढांचा ही था, एकदम से पूरा कंकाल सा लग रही थी जिस पर काले रंग का पेंट हुआ था। जल्दी ही करिश्मा जी और अमरेंद्र जी ने तारा और अमन से कहा था कि तुम दोनों अंदर जाओ, तब तक हम मल्लिका का दाह संस्कार कर आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चाहे कोई भी हो, अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो हो सकता है कि इसे मुक्ति ना मिले, लेकिन अब इसकी मुक्ति का समय आ चुका है, तो इसका दाह संस्कार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों अंदर जाओ, जाकर आराम करो, वैसे भी जिन्नाटों के वंशज को आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और बात, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते, तब तक तुम दोनों को अपना पूरा ख्याल रखना होगा। तारा ने जल्दी ही हाँ में सर हिला दिया था। अमन और तारा दोनों अंदर चले गए थे। वहीं सोनन परी, जो कि अक्षत के साथ थी, अक्षत को चूमने के बाद उसने अक्षत को उसके घर की ओर रवाना कर दिया था और खुद गायब होकर तारा परी के पास आ गई थी, क्योंकि इस वक्त सोनल परी सीधे सीधे तरीके से तारा परी के पास नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो जिस शादी के लिए वो वहाँ आई थी, वो उस शादी का तो नाम निशान मिट चुका था, तो इसीलिए अब वो गायब होकर तारा परी के पास आई थी। वहीं अमन, जो कि तारा को बड़ी ही मोहब्बत से देख रहा था, कहने लगा था, मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें पिछले दिनों कितनी ज़्यादा तकलीफें दी होंगी, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा तूफान आया था और तूफान के जाने के बाद अब सब कुछ थमसा गया है, अब सब कुछ अच्छा सा लगने लगा है, लेकिन तारा, मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ सा हो गया है कि, और मुझे साथ ही साथ इस बात का भी एहसास हो रहा है कि न जाने मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत किया होगा, तुम्हें कितनी तकलीफें सही होंगी, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही अमन ने इस तरह की बातें सुनकर कहीं, तारा उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, आपको इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अपने उन दिनों किया था वो अपने अपने होशो हवास में नहीं बल्कि अमित के वश में आकर किया था। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब काली शक्तियों के मालिक अमित का अंत हो चुका है और वो सीधा राख बनकर अपनी काली शक्तियों के गुरु के पास जा पहुंचा है। लेकिन अगर हमें आपको अगर कुछ करना ही चाहिए तो हमें अब काली शक्तियों के अंत के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से उस काली शक्तियों का गुरु का अंत होगा और किस तरह से हम प्रेमा का बच्चे को बचाकर लाकर उसे देंगे। तभी अमन ने उसकी ओर देखकर कहा था, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हमारा वंशज पैदा होगा वो काली शक्तियों के महागुरु का नाम और निशान मिटा डालेगा और मुझे पूरी उम्मीद है उसके बाद कभी कोई और काली शक्ति जन्म नहीं लेगी। और हाँ, तब तक हमारा वंशज नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे हमेशा करीब रहूंगा, तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, इतने दिनों से जो शादी के चक्कर में हम अपने ऑफिस का कामधाम छोड़कर बैठे हैं, हमें इंसानी कामधाम भी देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को हम पर शक होना शुरू हो जाए। और तभी तारा ने अमन से कहा था, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ डेली ऑफिस जाया करूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। और वैसे भी हमें ऑफिस के लिए नए मैनेजर भी तो ढूंढना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कल काली शक्तियों का महागुरु अपने किसी चूहा बिल्ली या शेर को मैनेजर बनकर हमारे पास ना भेज दे। जैसे ही तारा ने ये कहा अमन मुस्कुरा दिया था और उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर तारा के माथे को चूम लिया था और उसे गले से लगा लिया था। और तारा ने अमन के इस तरह से प्यार से गले लगाने पर सिर्फ और सिर्फ अमन का प्यार महसूस किया था। अब अमन के छूने में या अमन के किस करने में उसे किसी तरह की कोई हवस दिखाई नहीं दी थी। तभी अमन को गले से लगाते हुए तारा परी की नजर अचानक से अमन के ठीक पीछे खड़ी हुई सोनल परी पर पड़ी थी, जो कि इस वक्त गायब रूप में थी और तारा की ओर ही इशारा कर रही थी।
तभी तारा ने जल्दी से अमन को खुद से दूर करते हुए कहा था, अमन सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं। तभी अमन हैरानी से तारा की ओर देखने लगा था और कहने लगा था, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम। तभी तारा ने अमन से कहा था, वो एक्चुअली सर, जब से आपने काली शक्तियों के मालिक अमित से अपने जिन रूप में आकर फाइट किया, तब से आप में से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप प्लीज़